ओम शांति। आज का ये सत्र आप सबका सत्र है। आप सबके लिए विशेष ये सत्र आयोजित है, जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी होंगे और आप में से ही विशेष जिन्होंने अनुभव किए हैं उनके अनुभव सुनने का हमें मौका मिलेगा। क्योंकि आपका सत्र है तो मैं अपने मंच पर मंच को सुशोभित करने के लिए जिनका नाम उच्चारित करने जा रहा हूं उनका स्वागत आपको अपनी तालियों से करना है, लगातार करना है। जब तक वो आपके सामने ना आ जाएं तब तक आपको उनका स्वागत करते रहना है। और मैं सबसे पहले बुला रहा हूं आपके बीच उनके बारे में दो शब्द कहते हुए, राज जीवन का है जिसने जाना, राज जीवन का जिसने है जाना, प्रभु को अपना पिता है माना और पाए अनेकों है वरदान, सादगी शीतलता की उसकी है पहचान, सादगी शीतलता उसकी है पहचान, निस्दिन देती है जिसने जिसको, निस्दिन देती है सबको प्रभु पिता का सत्य ज्ञान। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बीके राजकुमारी। मैंने कहा सत्र आपका है तो तालियों की आवाज भी आपकी तरफ से आनी चाहिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके बीच एक ऐसे वक्ता को जिसके नाम से ही आपके मुख पर आपके चेहरे पर खुशी आ सकती है, और वो उस वक्ता को बुलाते हुए मैं कहता हूं मुस्कुराना सिखा दे वो रोते हुए को, मुस्कुराना सिखा दे वो रोते हुए को, खुशी से कर दे जीवन भरपूर। मुस्कुराना सिखा दे वो रोते हुए को, खुशी से कर दे वो जीवन भरपूर, सबको गुणी बना दे अपनी कला से, सबको गुणी बना दे अपनी कला से। इतने महान हमारे भ्राता गिरीश, प्लीज वेलकम भ्राता ईवी गिरीश। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा ये मंच आपके लिए है, तो आपकी तरफ से ही जो बातें हमारे बीच यहाँ पर प्रश्नों के रूप में हमारे सामने रखी गई हैं उन बातों को आपके सामने रखने के लिए हमारे अनुभवी राजयोगी बहनें और भाई हमारे बीच हैं, तो उनसे हम अपने अनुभव के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आमंत्रित करेंगे। और वो प्रश्नों की जो कड़ी है वो आपके तरफ से आए हुए प्रश्न ही हैं। उन प्रश्नों में सबसे पहले मैं आदरणीय राजकुमारी बहन जी जो हमारे बीच मुंबई से पधारी हैं, उनके अगर हम बायोडाटा की बात करें तो बहुत लंबा बायोडाटा है, लेकिन चूंकि आप उनके विषय में पहले से ही सुन चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए ये कहूंगा कि आप एक बहुत सरल जीवन की सरल विचारधारा की धनी हैं और बहुत ही सुंदर अनुभव के साथ राजयोगी बनने की कला सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी। बहन जी आपसे प्रश्न है कि संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी मनुष्य है, तो मनुष्य जो है बुद्धिजीवी है और इस दुनिया में जब जन्म लेता है तब उसे अनेक प्रकार का ज्ञान मिलता है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के जो परम पिता है जिन्हें परमात्मा भी कहते हैं उनको, इन्हें ये बताया गया है कि उनका नाम शिव है, लेकिन वो हम सबके परमात्मा है या नहीं, हम सबके परम पिता है या नहीं, एक तो वो आप बताइए, और दूसरा क्या जीव जंतु कीट पतंगे हैं उनका भी कोई परमात्मा है? राजकुमारी बहन जी
ओम शांति, बोलिए सभी ओम शांति। हम सभी जिस स्थान पर पधारे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही सत्य ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपने इस मंच से परमात्मा के संपूर्ण परिचय को जाना है, समझा है और स्वीकार किया है। हमारे जीवन की सत्यता हमको यहाँ पर समझ में आई कि हमारा जीवन दो चीजों से बना है, आत्मा और शरीर। जैसे शरीर के रिश्तों को हम मानते हैं, निभाते हैं, उन पर निश्चय रखते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर जो चेतना है, जो इस शरीर का भी आधार है, उस चेतना का रचयिता कहो, पिता कहो, वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए तो भक्ति में हम उसको मात पिता कहकर याद करते ही आते हैं। लेकिन सिर्फ उनका संपूर्ण परिचय नहीं था जो यहाँ पर प्राप्त हुआ कि वो निराकार हैं, इसलिए वो हमारे माता पिता सर्व संबंधी हैं। तो ये निश्चय तो सबसे पहले हमारी जीवन में जरूरी है, तभी हम उस परम पिता से सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। तो जिस तरह से परमात्मा हमारा सत्य पिता है, ऐसे ही सारी सृष्टि का वो ही पालनहार है और वो ही रचयिता है। इसलिए पशु पक्षी की बात करें तो हमें उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा जो इस सृष्टि पर देह धारण करके पार्ट प्ले कर रही है, मनुष्य शरीर का, जैसे आपके ही प्रश्न में था कि बुद्धिजीवी प्राणी, इसलिए जब मनुष्य आत्मा अपने को श्रेष्ठ बनाती है तो स्वतः ही सारी दुनिया श्रेष्ठ बन जाती है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, इसलिए उनकी चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है। जो मुख्य है वो मानव ही है। मानव श्रेष्ठ बनता है तो उसके संग से, उसके साथ से बाकी सब श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है, जो हमारे पालनहार हैं, हमारे कल्याणकारी हैं, इसलिए उनको मानना, उन पर निश्चय करना, ये हमारे लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है।
तो क्या परमात्मा सब जगह है?
नहीं, हम हमेशा कहते आए परमात्मा हमको देख रहा है, और कहाँ से देख रहा है? हम कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर से हमको देख रहा है। तो जरूरी है कि वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए सबके अंदर भी नहीं है, इसलिए हम उसको ऊपर वाला कहते हैं। आपने परमात्मा के परिचय में भी सुना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। वैसे भी जो जितना श्रेष्ठ होता है, महान होता है, उसका स्थान भी उतना ही ऊंचा होता है। आज आप देखते हैं कि देवी देवताएं जिनको हम मंदिरों में पूजते हैं, कभी भी कोई मूर्ति हम जमीन पर नहीं रख देते, उसके लिए एक ऊंचा सिंहासन बनाते हैं। और ईश्वर जो सभी देवताओं का भी रचयिता है, तो जरूरी है वो कितना ऊंच है, तो वो सब जगह व्यापक कैसे होगा? कुत्ते बिल्ली में या कीट पतंग में या मिट्टी के ढेर में वो कैसे हो सकता है? जब वो सबसे ऊंच है तो जरूर उसका निवास स्थान भी सबसे ऊंचा है, इसलिए हम उसको ऊपर वाला कहते हैं। और हमेशा कहते हैं जब कोई हमारे साथ अन्याय भी करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो जरूर है कि परमात्मा का निवास स्थान सबसे ऊंचा है, जो हम सभी आत्माओं का घर, वही हमारे पिता परमात्मा का घर है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए महान हस्ती है, और इस त्रिमूर्ति कड़ी जो हमारे बीच वक्तागण या हमारे एक्सपर्ट्स कहिए, उनमें जिनका स्थान खाली है, और इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी शक्ति है, जिनकी प्रेरणा है, जिनके प्रेरक वाइब्रेशंस के माध्यम से संकल्पों के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है, ऐसी महान हस्ती को आपके बीच आपके द्वारा आमंत्रित कर रहा हूं मैं। दिव्यता की है वो अखुट खान, दिव्यता की है वो अखुट खान, चेहरे पे चमक, फोटो पे मुस्कान, प्रेरित करती है अपने जीवन से सबको।
कौन
प्रेरित करती है जीवन से सबको? बहन दिव्य प्रभा है श्रेष्ठ और महान, बहन दिव्य प्रभा है श्रेष्ठ और महान, प्लीज वेलकम। क्योंकि मंच पर हमारे सबसे महान आत्मा पहुंच चुकी है, तो मैं इस महान संस्था जिसका पूरे विश्व भर में पांचों खंडों के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य लगातार पिछले 83 वर्षों से चलता आ रहा है और लगातार प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, समाज में जिसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, ऐसी संस्था किस प्रकार से कार्य करती है उस विषय में एक प्रश्न है। बहन जी, हमने देखा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सारे विश्व भर में बड़े विशाल स्तर पर समाज में नैतिक जागृति लाने का काम कर रही है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण का काम कर रही है और सामाजिक विकास के लिए भी बहुत सारे काम कर रही है, परियोजनाएं चला रही है। तो इतने सब काम करने के लिए आपके पास धन कहां से आता है, पैसा कहां से इकट्ठा करते हैं आप?
ओम शांति। ये प्रश्न विशाल कार्य को देखकर स्वाभाविक है ये प्रश्न का उठना, नेचुरल है। लेकिन इस विद्यालय का कार्य कैसे चलता है? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेगुलर आने वाले हर सेवा स्थान में, मैं समझती हूँ तो चलिए तो 9 लाख से ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर आने वालों के लिए कोई फिक्स मेंबरशिप नहीं है, कोई फिक्स डोनेशन देना है ऐसा नहीं है। लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान से, मेडिटेशन से और उस स्थान पर आकर के जो उनके जीवन में परिवर्तन आया है, चेंज आया है, कहीं वेस्टेज मनी होती थी पहले, उसकी बचत हो गई क्योंकि व्यसन छूटे, बाहर वेस्टेज जो खर्च करते थे वो छूट गया क्या, मन नहीं करता है उनका, और वो सेविंग होती है उनके, और उनसे उनको मन, तन और अपने परिवार के सदस्यों के साथ के रिलेशन में जो लाभ उनको मिल रहा है ना, जो चेंज उनमें आ रहा है, तो उनके मन में आता है कि यहाँ हम रोज आते हैं और ये हमारी निस्वार्थ सेवाएं करते हैं, कोई पैसे की इनकी डिमांड नहीं है, और फिर भी इतना प्यार से हमारे पीछे ये स्वयं अपने तन, मन और धन को लगाकर हमारी सेवा कर रहे हैं। तो अपने आप में उनके दिल में आता है कि हम भी कुछ यहाँ सेवा करें। तो इस विद्यालय की एक सिस्टम है कि यहाँ एक बॉक्स होता है जिसको हम भंडारी कहते हैं भगवान की, तो हम कहते हैं कि आपकी जो स्व इच्छा हो तो वो उसमें डालो। तो रेगुलर आने वाले भाई बहने हैं, उनकी स्व इच्छा से, उनकी यथाशक्ति से वो अपनी सेवाएं धन की देते हैं। उसके अलावा कई धन से नहीं भी कर पाते, हर प्रकार के आते हैं, तो समझते हैं कि हमारे पास जो कला है उससे हम सेवा करें, कहीं सिलाई की सेवा जानने वाले, कोई सुथारी काम, कोई प्लम्बिंग का काम जानने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि बहन कभी ऐसा कार्य हो विद्यालय का तो हमें बताइए। तो ऐसे हरेक व्यक्ति की अपनी अपनी कला, अपनी सेवा में, ईश्वरीय सेवा में वो लगाते हैं। और इसीलिए देखने में कईयों के मन में ये भी प्रश्न उठता है, इतना विशाल कार्य, इतनी विशाल जगह, तो ये होता है कि ब्रह्मा कुमारी इसके पास पैसे बहुत है, कईयों के मन में ये भी इम्प्रेशन होती है। लेकिन कैसे एक एक व्यक्ति की मदद से ये सेवा का कार्य होता है। वहाँ बॉम्बे में बोरीवली में भी 5 मंजिला मकान है, तो एक भाई रेगुलर आने वाले हैं। वो कहते हैं, मेरे फ्रेंड कहते हैं कि अरे बॉम्बे में इतनी बड़ी जगह है तो आपके विद्यालय के पास पैसे बहुत है। मैंने कहा उनको ले आऊं तो हम समझाएं कैसे हैं। वहाँ पर्दे की सिलाई हमें कोई कॉस्ट नहीं लगी। आने वाले सुथार भाई बहने हैं, उनकी टीम बना दी, उन्होंने जो कार्य किया उनकी कोई कॉस्ट न लगी। हमारे पास आने वाले एक भाई थे, उनके फ्रेंड थे, उनका प्लाई का बिजनेस था। उनको लगा कि आप लोग इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हो, एक ट्रक भर के उसने प्लाई भेजी कि मेरे ये बिजनेस है तो मैं ये सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक भाई हैं कि जिनका हैंडल का बिजनेस है, कबर्ड हो, किचन हो, और वो रेगुलर यहाँ आते हैं। तो कहते हैं कि बहन ये मकान बन रहा है ना, जहाँ हैंडल लगाने हो ना तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा अपना धंधा है। तो एक एक चीज हमें तो कॉस्ट लगी नहीं, आप आकर के देखोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसे पर्दे लगे हैं, ऐसा हैंडल लगा है, ये तो कितना खर्चा हुआ, वो गाय के पास पैसे ज्यादा है। लेकिन हमें उसकी कोई कॉस्ट लगी हुई नहीं होती। ऐसी बहुत सारी है, तो 2-3 बातें मैंने आपको बताई। अनाज है, किसका दूध का हो, किसका क्या हो, कहते हैं ना पूरी पूरी तालाब। तो इस प्रकार से एक परिवार है, और परिवार जैसे आज बॉम्बे में देखते हैं, एक परिवार होता है 3-4 कमा करके घर को चलाते, एक से नहीं चलता। यहाँ भी आने वाले भाई बहने हैं, उनकी यथाशक्ति जो जो अपनी सेवाएं कर सके वो करके इस संस्था को क्या करते हैं, चलाते हैं। कोई धनवान भी आते हैं, मध्यम वर्ग के भी आते हैं, लो लेवल के भी आते हैं, कई हैं। कहेंगे बहन हम यहाँ सफाई की सेवा करेंगे। आज बॉम्बे में सफाई के लिए रखो तो कितने हजार रुपए देने पड़ते हैं, वो रोज अपनी सफाई की सेवा दे के जाते हैं। इस प्रकार से ये कार्य चलता है।
अभी हम सब 3 मिनट के लिए परमात्मा की स्मृति में बैठे हैं।
शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
दिव्या बहन जी, आपने ये कहा कि आपके पास आने वाले विद्यार्थी बीके, जिनको आप कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, वो सभी ही वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन ही करते हैं जिसके माध्यम से संस्था का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो जो नियमित रूप से नहीं आते हैं, जिनको ईश्वरीय ज्ञान का नियमित लाभ लेने का मौका नहीं है, या जो अभी जैसे हमारे मेहमानगण आए हैं, तो ये लोग भी क्या इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में किसी रूप से सहयोगी बन सकते हैं? कोई ऐसी योजना जिनके माध्यम से ये अपने क्षेत्र में भी कोई कार्य में मदद कर सकते हैं?
इसलिए मैंने सुनाया कि वो मकान बन रहा था, आने वाले भाई थे, उनका संपर्क था, लेकिन वो ले आए और इस कार्य को देखा तो वो भाई रेगुलर आने वाले नहीं है। उन्होंने सुना है, समझा है, कार्य को देखा है, वो रेगुलर नहीं आते हैं, लेकिन उनको ये है कि यदि मेरी शक्ति ये है, मेरा बिजनेस ये है और ऐसे कार्य में मैं अपना सहयोग दे सकता हूँ, और उनके दिल में आई वो बात, तो उन्होंने सहयोग दिया। पैसे हमने नहीं लिए, लेकिन प्लाई उन्होंने वहाँ पर भेज दिया। ऐसे ही वहाँ इंटीरियर का काम करने वाला भाई एक था संपर्क, जो स्पेशली स्पिरिचुअल स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, उनका इंटीरियर का करते हैं, वो एक भाई के संपर्क में आए थे और कहा ऐसी चीज बन रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवाएं नहीं तो इंटीरियर वाले भी बहुत कॉस्ट लेते हैं, लेकिन बहुत सुंदर प्लान बना करके उन्होंने वो कार्य अपनी बार बार विजिट देकर अपना कार्य किया। ऐसे कोई भी कला अपने पास हो और हमें हमारी दिल मांगती है, हमारी इच्छा होती है कि हम सहयोग दें, तो कर सकते हैं उसमें। बाकी यहाँ कोई है नहीं कि भाई इतना आपको देना ही है, या इस प्रकार की कोई डोनेशन की बात है कि कोई मेंबरशिप की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसलिए जो बंगाली होती है हमारी बॉक्स में, जिसको जो डाले, बहनों को नहीं पता होता है कि कौन कितना उसमें कर रहा है, लेकिन कोई चीज वस्तु का सहयोग जैसे जैसे जिसका अपना हो वैसे कोई भी सहयोग देता है। ऐसे आप अपने आने वाले सेवा केंद्रों पर आपकी दिल, आपकी भावना, आपकी इच्छा हो, आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते।
मैं गिरीश भाई की तरफ रुख करते हुए आप सबकी एक बात रख रहा हूँ, क्योंकि आप सदा मुस्कुराना सिखाते रहते हैं, खुश रहने के बारे में बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, तो एक प्रश्न है। आप कहते हैं राजयुग हमारी जीवन शैली को बदल देता है, खुशहाल जीवन बन जाता है, तो क्या राजयुग के अभ्यास से गुस्सा, क्रोध, आवेश, कुछ भी नाम दो, जिससे आदमी अंदर से उबलने लगता है, उससे मुक्त हो सकते हैं? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्या राजयोग का अभ्यास करते हुए गुस्सा आता है?
ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, थोड़ा सा उमंग उत्साह से कहिए, आजू बाजू वाले को जगा कर कहिए, भारत के लोग आंखें खोल के भी सोते हैं, ठीक है ना, और इतनी अच्छी तरह सोते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता है कि सो रहे हैं या जागृत अवस्था में। दो प्रश्न हैं। पहला, राजयोग के अभ्यास से गुस्सा या क्रोध आवेश, इस पर जीत पाया जा सकता है? उसका सिंपल सा उत्तर है 100% पाया जा सकता है।
तो आप सब चाहते हैं क्या?
हाँ।
तो अभ्यास करेंगे,
लेकिन उसके लिए उसके कारणों को समझना बहुत जरूरी है कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा का एक मुख्य कारण है मैं, गलत मैं। जो करेक्ट मैं है, जो सत्य मैं है, वो हूँ मैं, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। लेकिन मैं मम्मी और ये सुनता नहीं तो चेहरा ही चेंज हो जाता है। मैं पति, मैं सासू माँ और ये बहू नहीं मानती तो गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं ये सोचूं हाँ ताली बजाइए, भाई लोग ताली बजा रहे, पीड़ित ज्यादा हैं भाई लोग यहाँ पे, ठीक ठीक है। एक कारण ये। दूसरा, हमको ये समझना है कि क्रोध को समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश की कमी है, ऐसे ही क्रोध शांति की कमी है। अंधकार को हटाने के लिए हम अंधकार पर काम नहीं करते हैं, प्रकाश उजाले को, रोशनी का निर्माण करते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास जब चाहें जैसे चाहें आसान तरीके से, बस स्विच ऑन करिए बल्ब जल जाना चाहिए, अंधकार चला जाएगा। ऐसे ही राजयोग का सही विधि प्रमाण अगर हम अभ्यास करते हैं और इतना हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आए कि मैं बटन दबाऊं और शांति का प्रकाश फैल जाए, तो क्रोध का अंधकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नंबर टू, राजयोग का अभ्यास करते समय भी क्रोध आ सकता है क्या? ये राजयोग का अभ्यास एक यात्रा है और इस यात्रा में जो राजयोगी राजयोग को कितना इंटरेस्ट के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ, लगन के साथ करता है, उस पर निर्भर करता है वो कितना जल्दी क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। बट जैसे कि एक क्लास में एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है, हो सकता है उसमें कोई बच्चा फेल भी हो जाए और कोई बहुत अच्छा मार्क्स भी ले, ये इस बात पर भी निर्भर करता है। एक तो पढ़ाई, टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, उसके साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चा कितना लगन से उसको पढ़ता है। तो ये हर एक राजयोगी के पर्सनल पुरुषार्थ पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छी रीति से क्रोध पर जीत पा सकता है।
धन्यवाद। दिव्या बहन जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे गिरीश भाई जी कह रहे हैं कि जीवन खुश रह सकते हैं और राजयोग से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो क्या मानव जीवन में खुशहाली के लिए, वो सच्चे सुख का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कितना कारगर है और क्यों जरूरी है?
ओम शांति। प्रश्न था कि सुख की अनुभूति के लिए आज की दुनिया में बहुत सारे भौतिक साधन है, उनसे सुख मिलता है लेकिन अल्पकाल के लिए। हमारी इस शरीर की कर्मेंद्रियों से भी हमें सुख मिलता है लेकिन अल्पकाल के लिए। जैसे कोई भोजन की चीज अच्छी लगती है और हम खाते हैं, हमें उसको देख करके खा करके खुशी होती है, लेकिन वो कितना समय हमारे मुख में वो रहता है और कहते हैं गले से नीचे और उतर जाए फिर कोई टेस्ट नहीं है उसका। अल्पज्ञ सुख है, आंखों का देखने का भी अल्पज्ञ, कानों से सुनने का भी, हर शरीर की कर्म इंद्रियों का जो सुख है अल्पज्ञ है। और हम सब चाहते हैं कि सदा काल खुश रहे, हमेशा खुशी रहे, हमेशा आत्मा को सुख की फीलिंग महसूसता वो बनी रहे, यही चाहते हैं ना। कि आप सब टेम्पररी चाहते हो, क्या चाहते हो हाथ उठाओ, सदा के लिए चाहते हैं। तो देखो सब सदा के लिए चाहते हैं। तो ये बाह्य चीजें ये हमें अल्पज्ञ सुख देगी, लेकिन अंतर आत्मा का सुख ये किसमें समाया हुआ है, वो है प्योरिटी में। यहाँ बहुत अच्छा इस विद्यालय का स्लोगन है, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, जन्मदाता है। तो हमारे जीवन में भी जितनी शुद्धि, सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं लेकिन मन के विचारों में, शब्दों में, हमारे कर्म में, शरीर को स्वच्छ रखना, वस्त्र को स्वच्छ रखना, जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं उसको स्वच्छ रखना, उसको प्योर रखना, ये चीज हमें सुख देगी। आज आप देखेंगे कि कहाँ गंदगी और अव्यवस्था हो, वहां पर अस्त व्यस्त हो, वहां जाओगे तो आपके मन की स्थिति क्या होगी। और कई बार देखा है कि मिट्टी का बना हुआ घर होता है, लेकिन अंदर जाओ ना तो इतना क्लीन, नीट, साफ, और बर्तन इतने चमक रहे होते हैं वो पीतल के, जैसे गोल्ड के हो। अंदर जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, सुख दे रही है वो चीज। क्यों? स्वच्छता, शुद्धि। तो हमारे तन की, मन की, वस्त्र की, भोजन की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, ये हमें अंतर आत्मा को सुख देने वाली है। और उस शुद्धि को हम मैनेज करते हैं, बना के रखते हैं, तो हम सदा खुशनुमा जीवन जी सकते हैं और सदा आनंद की और खुशी की अनुभूति। इतना ही नहीं, लेकिन मैं अनुभव के आधार से ये कह सकती हूँ कि बार बार ये सोच आता है कि हमारे जैसा इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है।
तो बहन जी, इसका अर्थ ये है कि आप ये सात्विक भोजन, जैसे आपने कहा, तो नॉन वेज भी शुद्ध तरीके से बनाया जाए तो वो भी तो शुद्ध भोजन है, उसको खाने से क्या कोई समस्या आती है या उसको खाया जा सकता है? राजयोग के अभ्यास करने वाले भी राजयोग के टाइम पर भी नॉन वेज खा सकते हैं क्या?
जैसे भोजन की बात कही, ऐसे सारी बातों में ये चीजें हैं कि अभी हम शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे शब्द प्रयोग करते हैं, कैसे वो बोलते हैं, क्या शब्द यूज करते हैं, उसका भी इफेक्ट है कि नहीं है। ऐसे भोजन के अंदर भी हम सात्विक आहार ग्रहण करें तो उसका भी इफेक्ट हमारे तन और मन पर होता है ना। जितना तामसिक भोजन लेंगे तो हमारे मन को उग्र करता है। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि जैसे प्याज होता है, खाने की बात तो छोड़ ही दो ने? लेकिन जब उसको काटते भी हैं तो काटने वालों का एक्सपीरियंस होगा कि कितनी आंखें जलती है, और आंखों से काटते ही उनका प्रभाव हमारे पर होता है, और वो हम खाएंगे, उनसे हमारा ब्लड बनेगा और हमारे ब्रेन को भी पहुंचेगा, तो दिमाग गर्म होगा या नहीं होगा? क्या होगा, क्या समझते हो? गर्म होगा। तो अन्न का मन पर प्रभाव है। अभी वर्तमान में जो शब्द मैं बोल रही हूँ और जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ उसका प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं लेकिन मेरे खुद पर भी उसका असर होता है। इसलिए जैसे गुस्से की बात कही थी कि गुस्से से बोलेंगे दूसरों को ही नहीं नुकसान, लेकिन सबसे पहला नुकसान तो किसको होता है? खुद को होता है। इसलिए खाना हो, बोलना हो, देखना हो, सुनना हो, सोचना हो, उसमें विकृति है तो वो आपके लिए दुखदायी होगी। तो ये सारी चीजें सात्विक चाहिए, उसमें प्योरिटी, शुद्धि हर चीज में चाहिए।
सुरेश भाई, मैं इस पर थोड़ा सा एक अनुभव
हाँ
सुना।
जरूर जरूर, कुछ वैज्ञानिक तरीके से भी कुछ सुना सकते हैं।
वैज्ञानिक तो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा बिहेवियरल और व्यावहारिक बात बताऊंगा। मैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर प्लांट है नरोरा में, वहां हम कार्यक्रम कर रहे थे। वो कार्यक्रम के दौरान जैसे आपका एक प्रश्न आया कि ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व सुख शांति के लिए कैसे है, वैसे ही एक साइंटिस्ट भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, सभा में पूछा। और शायद ये प्रश्न आपने कई लोगों से सुना भी होगा, आपको लोगों ने मना भी किया होगा ओम शांति में नहीं जाने के लिए। वो भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा, गिरीश भाई मुझे ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी लगती है, आपका माउंट आबू मैं दर्शन करके आया, वो बहुत अच्छा है, बहनें बहुत अच्छी है, आप लोग सेवाएं बहुत अच्छा करते, आपके भाषण बहुत अच्छे हैं, आपका क्लीन एनवायरमेंट होता है, आप समाज सेवा बहुत अच्छा करते हैं, आपके एक एक स्पीकर इतना अच्छा ज्ञान सुनाते, सब अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा बस एक ही प्रॉब्लम है ब्रह्मा कुमारी के साथ। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा आप है ना हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना देते हो। कुछ भाई बहन तो ताली भी बजा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको किसी ने कहा होगा कि भाई बहन बना देते हैं? अच्छा, तो मैंने कहा भाई साहब हम भाई बहन नहीं बनाते हैं, हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो सब मुझे पता है लेकिन पहले ये बताइए भाई बहन क्यों बनाते हो? मैंने कहा हम कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाते हैं, पतित दुनिया को पावन दुनिया, अच्छी दुनिया बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा वो सब मुझे पता है लेकिन भाई बहन क्यों बनाते वो बताइए। मैंने कहा सर हम नेगेटिविटीज को हटाकर पॉजिटिविटी का काम कर रहे हैं। बोला वो भी मुझे पता है लेकिन भाई बहन क्यों बनाते वो बताइए। उनकी गाड़ी भाई बहन में अटक गई थी। मैंने कहा भाई साहब इसका उत्तर मैं आपसे प्रश्न पूछ के करता हूँ, ये प्रश्न आप लोगों को भी मैं करता हूँ। मैंने वो भाई साहब को कहा भारत में पति हस्बैंड नंबर आप डिसाइड कर लीजिए 10%, 50%, 80%, 90%, 100%। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा प्लीज बताइए नंबर्स में, परसेंटेज में, पति घर में जाता है रात्रि भोजन करने के लिए, पत्नी प्लेट में दाल रोटी चावल सब्जी परोसती है, पति बड़े इंटरेस्ट के साथ रोटी का टुकड़ा तोड़ के सब्जी में मिक्स करके जैसे ही वो निवाला मुख में डालता आई करके उसको बहुत ज्यादा नमक। मैंने कहा भाई साहब जवाब आप दीजिएगा। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा कितने पति भारत में परसेंटेज में बताइए ये नमक वाला सब्जी खाकर पत्नी पर गुस्सा करेंगे या नहीं? करेंगे या नहीं करेंगे? बहने बोल रही हैं बिचारी, ठीक है ना। कितने पति परसेंटेज में करेंगे? हाँ, मैक्सिमम नंबर बता दीजिए 99। कितने दुखी होकर बोल रही है 99% पति नमक वाला सब्जी खाकर पत्नी पर गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा डन। मैंने कहा आप पति रक्षाबंधन के दिन अपने बहन के घर जाते हैं राखी बंधवाने के लिए और आपकी बहन कहती है भैया साल में एक ही बार तो आप आते हो राखी बंधवाने के लिए, आज खाना खा करके जाइएगा। भैया कहता है ठीक है, तू इतना प्यार से बोल रही है ना तो खा लेता हूं। बहन ने भी वही दाल रोटी चावल सब्जी, भैया बड़े प्यार से रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी में मिक्स करके जैसे ही मुख में डालते आई वैसा ही नमक। प्लीज बताइए परसेंटेज में कितने भाई अपनी बहन पर गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, परेशान करेंगे? माय गॉड क्या डिफरेंस है, 0%। मैंने कहा भाई साहब व्यक्ति आप सेम हो, आप ही यहाँ पति, आप ही यहाँ पर भाई, खाना भी वही, ये भी महिला, ये भी महिला, और आपका दृष्टिकोण, आपका बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया में इतना जमीन आसमान का फर्क, यहाँ ब्रह्मा कुमारी कहां पर आ गई? आप पुरुष को गुस्सा करने का अधिकार है, आपको गुस्सा करना आपका अधिकार लगता है और आप गुस्सा करते भी हैं, लेकिन वही नमक, वही वातावरण, वही सिचुएशन में आप भी वही व्यक्ति यहां पर बड़े प्यार से इसको कहते हो। पता है बहन को क्या कहेंगे, ये क्या खाना बनाया है, तुमको पता नहीं मुझे ब्लड प्रेशर है, जाओ दूसरा लेकर के आओ, तुमको इतनी भी अक्ल नहीं है। और पत्नी को पता है पति क्या बोलेगा, मार ही डालोगी तुम तो हमको। मैंने कहा सर कहां पर ये दृष्टिकोण में परिवर्तन कहां से आया, जस्ट बिकॉज ये पत्नी है, जस्ट बिकॉज ये बहन है। ब्रह्मा कुमारी हर पति पत्नी को भाई बहन बनाती है, बनाती रहेगी, मरते दम तक गिरीश भाई भाई बहन बनाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है, हमको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको बस एक ही उद्देश्य है, पति पत्नी हो या कोई भी हो, प्यार, शांति, सम्मान, रिस्पेक्ट पति पत्नी के बीच में स्वतः आ जाए। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप उसको बहन की दृष्टिकोण से देखते हो। भारत का संविधान पति को अधिकार नहीं देता है पत्नी को गुस्सा करने का। अगर पत्नी कंप्लेन कर देगी ना पुलिस स्टेशन में तो पति अंदर हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते ये मेरी पत्नी है मैं कुछ भी करूं, लेकिन वहां रिस्पेक्ट, रिगार्ड, पवित्रता, क्षमा, दया, करुणा ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये कौन है? बहन है। बस हम यही चाहते हैं भारत विश्व के हर घर में, घर घर में पति पत्नी के बीच प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड हो। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आपके अंदर वो पवित्र दृष्टिकोण हो कि ये भी एक आत्मा है, ये भी एक महिला, इसको भी दर्द होता है। ये पति लूज कर जाता है क्योंकि मैं कौन हूं? पुरुष, और ये कौन है? पत्नी। देखो इसीलिए भगवान ने कहा, जो दीदी कह रहे थे, पवित्रता सुख शांति की जननी ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि घर घर में सुख शांति हो। ठीक है, ठीक है, ओम शांति।
तो आपने प्रेम की इतनी अच्छी बात सुनाई है तो मैं प्रश्न की बजाय प्रेम की तरफ ही चलता हूं। कहते हैं प्रेम के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है, कहते हैं कि तलवार के वार से भी ज्यादा इफेक्टिव है प्रेम का अधिकार। तो मैं ऐसे ही, और दूसरी बात सात्विक भोजन की जब कर रहे थे तो प्रसाद होता है तो उसको आंखों से लगाते ना, तो प्रेम और प्रसाद दोनों का सम्मिल सामूहिक रूप एक विशेष आत्मा के रूप में आप में से ही एक है, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, प्रेम प्रसाद भट्टाराय जो नेपाल से हमारे बीच पधारे हुए हैं, तो प्लीज आप ताली बजा करके उनका स्वागत करिए, प्रेम प्रसाद भट्टाराय। आपने यहां पर 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस के अब तक के दिन बीते हैं उनमें जो कुछ अनुभव किया है वो आपके बीच कुछ 2 शब्द के रूप में सुनाना चाहते हैं, और अपने प्रेम में जीवन के आधार पर इस योग की साधना को जोड़ करके कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है वो सुनाना चाहते हैं। तो प्रेम प्रसाद भट्टाराय जी जो नेपाल से आए हैं, विशेष इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है और कॉलेजेस के अंदर भी कैंपस इंचार्ज के रूप में रोल अदा करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द के रूप में अपना अनुभव सुनाएं।
ओम शांति। थैंक यू फॉर ब्रह्म कुमारी राजयोग माउंट आबू हेडक्वार्टर एंड ऑल द रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज इन फ्रंट ऑफ मी एंड द मैनेजिंग कमिटी। द थॉट टू गिव मी अ चांस टू एक्सप्रेस सम ऑफ माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। I would like to respect all the family of Brahma Kumari Rajyog. I am from Nepal, from Biratnagar Kendra. And I would like to salute my own country, my parents, my forefathers, and all the country members and friends of India and the whole Indian people. I would like to salute you all. What I launch here for these few days is love. What's love? What men live by? What makes us live in this world? That's love. If love is not here, we won't survive in this world. Men made us for loving each other. And this Brahma Kumari Raj Yoga also taught us to love to the Almighty God, that supreme light that exists and that leads us to from darkness to light. It leads us from death to immortality. It is the supreme power and that we learn here. With mutual aid and mutual support with the God. Though the God is not seen anywhere, but we can feel it. Because our gurus, dadis, and the doctors, engineers who express their ideas, saying that you are the soul, and this is only our body, and we are of different bodies, but the soul is the same in us. That makes or that unites us into one, and make us love each other. With mutual aid and mutual support, loving each other, walking together, eating together, and staying together, we can improve our life. We can think, we should think positively with the other souls and love each other. By means of this yoga, I learned what I learned, the different kind of pleasure that I had ever felt. And that pleasure is beyond expression. I learned that pleasure. I learned that discipline which I have not mentioned before. I am trying my best to maintain it in my life. And that Brahma Kumari Raj Yoga taught it to me. And the main topic here is speed. Okay. What I learned from speed, safety and spirituality, is speed of our life from birth to death. We should not disturb others while traveling from birth to death. Our speed should not be, should not hamper anyone else. And we always remember the God in us and behave others. It all are soul holders and they are also gods. Thank you, sir, for providing us this opportunity. And I would like to thank Brahma Kumari Raj Yoga Nepal and the headquarters also for providing us such a beautiful chance. And I would thank you all, my respectable ones, to listen to me for some while. Thank you.
Suresh bhai, Bharat ki taraf se Nepal ke daju, didi aur bahinon ko tapai lai, bhete re khushi lagyo. ताली बजाइए. इसका मतलब है हम
जैसा नाम वैसा इन्होंने अपना अनुभव भी सुनाया है. हम सबको परमात्मा जो प्रेम का सागर है उससे अपना प्रेम में संबंध बनाते हुए आप सबके बीच रहते हुए समाज में प्रेम की धारा को आगे बढ़ाना है. यही इनके अनुभव का सार है
जी.
अब चूंकि हमारी दिव्या बहन जी को किसी विशेष कार्य अर्थ दूसरे स्थान पर जाना है, लेकिन मैं अंतिम प्रश्न आपसे एक पूछना चाहूंगा कि बहन जी, राजयोग की अनुभूति करने के लिए आप सब कहते हैं खुली आंख से बैठना चाहिए, तो खुली आंख से बैठेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? और खुली आंख से बैठने से हमारा ध्यान एकाग्र कैसे होगा?
प्रश्न है कि खुली आंखों से कैसे भगवान का ध्यान करें। काफी समय से हमने सुना है, देखा है और किया ऐसा है कि आंखें बंद करके भगवान को याद करते रहे हैं। ऐसा है कि कोई खुली आंख से भी याद करने वाला बैठा है यहाँ? तो हाथ उछा गए। हाँ, बहुत कम है। तो ये बात है कि आंखें खुली रख करके ध्यान करेंगे तो कहते हैं कि डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन देखा गया है कि जब आंख खुली है तो जो सामने है, जो दिखाई देता है, उतना ही हम सोचते हैं, और जब आंखें बंद कर देते हैं तो बहुत सारे स्क्रीन पर अलग अलग बहुत सारी बातें आती हैं। तो आंखें बंद करके डिस्टर्बेंस नहीं होता है? आंखें बंद करके न होता हो डिस्टर्बेंस हो, हाथ उठाओ भाई। बहुत सारे विचार, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे सीन हमारे सामने आते हैं, तो खुली आंख के बजाय बंद करने से और ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए आंखें खुली रखनी चाहिए। और आंखें खुली इसलिए भी रखें, आंखें बंद करते हैं तो बंद आंखों में कभी नींद भी आ जाती है। यहाँ भी बहुत लोगों ने की होगी ना नींद। आंखें खुली हो तो जागृत, हमें परमात्मा के साथ मिलन, मुलाकात। आज किससे मिलने जाएं तो आंखें बंद करके जाओगे? आंखें बंद करके उससे बात करोगे कि आंखें खोल के बात करोगे? ये भी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है, तो हमें जागृत रहना है, आंखें खुली रखनी है और उनसे मुलाकात करनी है। उनका जो प्रकाशमय दिव्य स्वरूप, वो हमारे सामने आए, उनके गुण, उनके कार्य, उनकी शक्तियां, वो स्मृति में आए। और आंखें खुली रख करके योग करने से हमें फायदे भी है। फायदा ये है कि जो सोच हमारे मन में चलता है उसके वाइब्रेशन हमारे नेत्र द्वारा एटमोस्फियर में फैलते हैं। तो हम मेडिटेशन कर रखे हैं तो बहुत प्योर थॉट्स होते हैं, तो वो वाइब्रेशन हम विश्व के अंदर फैला रहे हैं। तो आंखें खुली रखना ये मेडिटेशन के लिए जरूरी है। एक जगह पर एकाग्र करें उनको, और जहां आप एकाग्र करोगे उसके बारे में ही आप सोचोगे, दूसरे विचार आपके मन में नहीं आएंगे। आंख बंद करने से तो और भी ज्यादा विचार आएंगे, इसलिए आंखें खुली रख करके हमें मेडिटेशन करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले आप यहाँ बैठे हैं, तो जैसे आप गाड़ी चलाते हैं उस समय पर क्या आंखें बंद करके रखते हैं? नहीं ना, वो एक यात्रा है और ये अंतर जगत की यात्रा है। इसीलिए बहनें हमें सिखाती हैं कि हमें आंखें खुली रख करके ही इस यात्रा पर जाते हुए आनंद लेना है, तो ये यात्रा भी सफल और सुरक्षित यात्रा रहेगी और उससे हम सशक्त भी बनेंगे। बहन जी हमसे विदा ले रही हैं, आप सब धन्यवाद। राजकुमारी बहन जी से मेरा ये प्रश्न रखने का ख्याल इसलिए आया है क्योंकि आप पूरे मुंबई के एक बहुत ही विशेष क्षेत्र में कार्यरत हैं और ये समस्या आप कई बार सुनते देखते रहते होंगे। प्रश्न ये है कि माँ बाप जिन्होंने बड़ी मेहनत से बच्चे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा पद प्राप्त करने के योग्य बना दिया,
डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर कुछ बना दिया और जैसे ही उस बेटे की एक सुंदर सी पत्नी जिसकी चाहत माँ बाप रखते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, वो लक्ष्मी आई और थोड़े समय के बाद ही माँ बाप को वो लक्ष्मी अपने नारायण से कहती है कि इनको विदाई दो, अब इनको अनाथ आश्रम में भेजो, कहीं और भेजो, नहीं तो अलग से फ्लैट लो, मुझे अलग लेकर के चलो। तो उस माँ बाप की मनोस्थिति पर क्या होगा और उसको जो पीड़ा होती है उसका द्वंद है, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
इस सृष्टि रंगमंच पर हम सबको अपना अपना एक रोल मिला हुआ है और उस रोल के आधार पर हमको सभी संबंध भी मिले हुए हैं और कर्मों की गति ये कहती है कि अगर हम अपना फर्ज नहीं निभाते तो हमारे सिर पर उसका कर्ज रह जाता है और वो जो कर्ज होता है वो एक मर्ज बन जाता है, एक बीमारी के रूप में आता है। इसमें एक जो मिसाल मैंने सुना वो सुनाना चाहूंगी कि जब एक बेटे ने अपने पिता को इसलिए नहीं संभाला कि उसको हाथ पकड़ करके उनको बाथरूम तक ले जाना पड़ेगा और इतनी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया। परंतु कर्मों की गति ऐसी है कि अगर हम जो सेवा जो पालना ली है अगर उसका रिटर्न नहीं करते हैं तो वो जो हमारे ऊपर कर्ज है वो ब्याज सहित हमको लौटाना पड़ता है। इसलिए जब उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा और उस आत्मा ने, पिताजी की आत्मा ने अपने ही बेटे के घर में एक अपंग बच्चे के रूप में जन्म लिया, अभी जीते जी उसके पिताजी को तो उनको अंगुली पकड़कर सिर्फ वॉशरूम तक ले जाना पड़ना था जो कर्जा उन्होंने नहीं चुकाया, अब उनको उनको गोद में उठाकर के सारी जीवन पालना पड़ेगा। तो आप देखिए कि कर्ज कितना बढ़ गया, ब्याज कितना ज्यादा लग गया, है ना। तो इसलिए उन माँ बाप के ऊपर बहुत ही दुख का वो समय होता है जिन्होंने इस अरमान से ही अपनी रचना को रचा, उनको पाला और दिन रात मेहनत करके उनको उनके पांव पर खड़ा किया सिर्फ इसी ही आश को लेकर कि बुढ़ापे में ये हमारी संभाल करेंगे। लेकिन अगर उसी आश को उन्होंने पूरा नहीं किया तो उनसे निकलने वाली जो बद्दुआ है वो बच्चों को कभी सुखी नहीं रहने देगी। इसलिए इस फर्ज को हमें बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए क्योंकि बड़ों की दुआ हमको बहुत बहुत आगे बढ़ाती है, हमारे कष्टों को दूर करती है और उनके आशीर्वादों से हमारी सभी समस्याएं सहज हल हो सकती हैं। मैं तो यही अनुभव से कहूंगी कि आज के जो दुख दर्द हैं वो इसी कारण से हैं क्योंकि हम अपने बड़ों की दुआओं से वंचित हैं और जिस दिन हम उनकी दुआएं लेना शुरू कर दें, उनसे ऐसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उनकी संभाल करें तो हमारे दुख दर्द सहज ही मिट जाएंगे। ओम शांति।
बहन जी, ये आपने ये कहा कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो माता पिता जिनके साथ ऐसी परिस्थिति होती है, जिनको उसको दुख को सहन करने जैसी स्थिति बनती है, वो क्या प्रयास करें जिससे वो दुख से बाहर आ जाएं? वो क्या राजयोग इसमें मदद कर सकता है और क्या उन्हें चिंतन में लाना चाहिए ताकि वो बार बार उससे दुखी और व्यथित ना रहें?
क्योंकि जैसे बताया गया कि हमारे कर्मों की गति है, कहीं पर ऐसा भी है कि हमने जो अपनी रचना के लिए किया है शायद वो हमारा रिटर्न हो, हमने उनके लिए रिटर्न किया हो, इसलिए भी हमें उनसे ज्यादा अपेक्षाएं न रख करके अपने को परमात्मा से जोड़ना जरूरी है क्योंकि कई बार हमें उनसे सभी प्रकार की पालना तो मिल जाती है, परंतु उनका संग और साथ और उनका स्नेह नहीं मिलता। शायद वो इसलिए क्योंकि हमारा कुछ उनसे लेना नहीं बनता होगा। तो इसलिए परमात्मा को अगर हम अपना साथी बना लेते हैं, जो राजयोग के द्वारा संभव है, तो हमारे दुख दर्द मिट सकते हैं। वैसे भी हम भक्ति में भगवान को सर्व संबंधों से याद करते हैं कि आप हमारे बच्चे भी हो, हमारे साथी भी हो, हमारे दोस्त भी हो। तो इस तरह से राजयोग के द्वारा हम ईश्वर के सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, तो हमारा ये दुख दर्द बहुत बहुत कम हो सकता है, या इस परिस्थिति का भी हम सहज रीति से सामना कर पाएंगे जब हम राजयोग के द्वारा परमात्मा को अपना साथी बना लेंगे और उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।
गिरीश भाई, अब मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ जाता हूं। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे उसका जीवन खराब हो रहा हो, या ऐसा काम करने के लिए बाध्य करे अपनी आदतों के कारण कि बच्चा नहीं करना चाहता है, वो गलत काम है, नहीं करना चाहता है, और फिर भी वो मजबूर करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे को क्या सोच करके उससे बचना चाहिए, क्या प्रयास करने चाहिए ताकि वो उससे बच सके? क्योंकि वो ये महसूस करता है कि इससे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिर भी वो दबाव डालते हैं, तो क्या प्रयास हो जिससे वो बच सके?
ओम शांति। हमको प्रयास यही करना है, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या अनुभवी हो, पढ़ने वाले कोई बच्चे हो या नौकरी करने वाले हो, हमेशा हमारे कर्म जो होने चाहिए वो बहुत ही राइचियस होने चाहिए, सत्य होने चाहिए और शुभ होने चाहिए। अगर कोई दबाव देता भी है तो भी हमारे अंदर इतनी आत्मशक्ति, इतना मनोबल होना चाहिए कि मैं अपने सिद्धांतों को उस पे बिना कॉम्प्रोमाइज किए उस पर चलूं, लेकिन साथ साथ, क्योंकि माता पिता हैं, अब उनको छोड़ तो सकते नहीं है, उनके विरोध तो कर नहीं सकते हैं, हम अपने सिद्धांतों को पकड़ के रहें और उनको बहुत सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते भी रहें। जो बात जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर कोई मतभेद है, वो चाहते हैं कि आप ऐसा करो, मुझे लगता है कि वो गलत है, तो मैं वो नहीं करूं, लेकिन
केवल मुझे नहीं, वो है ही गलत सामाजिक दृष्टिकोण से भी।
हाँ, तो वो भले गलत ही हो, लेकिन वो माता पिता भी तो हैं, तो मैं अपना बच्चे का फर्ज माता पिता के प्रति, उनका लालन पोषण, उनका देख रेख सब करता भी रहूं, लेकिन अपने सिद्धांतों के आधार पर वो जो मुझसे गलत करवाना चाहते वो भी मैं ना करूं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सामने वाला मुझे गलत करने को कह रहा है और वो मैं ना करूं, लेकिन रिटर्न में मैं उनको बड़ा प्यार भी दूं, सम्मान भी दूं, एक बच्चे का अच्छा बन करके बेटे का पूरा फर्ज निभाऊं, इसके लिए बहुत पावर चाहिए। राजयोगा मेडिटेशन हमको वो आंतरिक शक्तियां देता है जहां मैं सत्य करूं, जो गलत करवा रहे हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा शुभ भावना, शुभ कामना रख करके उनको बड़ा प्यार करूं, तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो मुझे गलत करने पर बाध्य नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि बेटा तुम जो कर रहे हो यही करेक्ट है। उनमें रियलाइजेशन, उनमें ये भावना आ जाएगी कि हम गलत हैं और बेटा आप करेक्ट।
धन्यवाद। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि वो शक्ति के आधार पर अपने सिद्धांतों पे आगे चलते ही रहें और सम्मान देते ही रहें, तो एक ऐसी महान आत्मा हमारे बीच है जो रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे बीच पधारी हुई हैं और रेल परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच, जो नाम से अपने आप में एक विशेष शक्ति का रूपक है, जिसका नाम ही है अजय सिंह। तो उस अजय सिंह जी को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं, जो अपना 2-3 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे कि इस
कॉन्फ्रेंस में, महासम्मेलन में उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। अजय सिंह जी को ताली बजा करके आप स्वागत करिए।
ओम शांति, ओम शांति। इस मंच पर विराजमान दीदी राजकुमारी जी, गिरीश भाई, सुरेश भाई, मैं इनका तहे दिल से रतलाम सेंटर जो है हमारा उनकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और आज उन्होंने इस भारतवर्ष के एक छोटे से शहर जिला रतलाम के इस मंच पे बुलाकर काफी शोभा बढ़ाई, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा यहां आने का मकसद ये था कि मैंने काफी ब्रह्म कुमारी के बारे में सुना था, बाकी पहली बार मैं यहां आया हूं और ये पिछले जो चार दिन से तीन दिन का ये प्रोग्राम इसको अटेंड करा। 100% तो नहीं बोल सकता हूं मैं, बाकी ये है कि 70% और 80% के समथिंग अटेंड किया। यहां आके जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हुए। अभी गिरीश भाई ने बताया जो भाई बहन वाली जो एक थी, क्योंकि यहां से आदमी कुछ सीख के जाता है और बाहर जाकर और कुछ बताता है, तो एक जो डाउट्स हैं क्लियर हुए। प्लस यहां पर जो अभी जितने भी लेक्चर हुए, मैं सुरेश भाई को भी बोलना चाहता हूं, श्रेया दीदी का लेक्चर इतना शानदार रहा कि मतलब मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पर्सनल लाइफ में व्यक्ति के क्या क्या चीज होती है उसके बारे में जानकारी दी। दूसरी चीज, अभी इस मंच के अंदर एक बात चल रही थी कि बेटे प्रॉब्लम करते हैं, बहू प्रॉब्लम करती है, तो मैं बहन दीदी जो राजकुमार जी है, तो बच्चे तो ऐसे होते हैं, बाकी उनको बच्चों को मेंटेन कैसे किया जाए वो चीज बताई जाए, क्योंकि क्या है उनके माँ बाप तो समर्पित रहते हैं प्लस इस संस्था से भी जुड़े रहते हैं, बाकी अधिकतर के बच्चे उन्हें कॉपरेट नहीं करते हैं। तो मैं दीदी बहन दीदी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इस संबंध में वो बताएं। मेरा यहां पर अनुभव यह रहा है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी काफी अच्छा, लोगों को अच्छा संदेश देती है और उनके अंदर जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है वो काफी डाउट क्लियर करती है। और हम लोग तो 24 घंटे भारतीय रेल की सर्विस करते हैं, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, बाकी फिर भी मैं अपने जितने भी बंधु हैं उनसे ये बोलूंगा कि जब भी आपको ऐसा मौका मिले कुछ क्षण के लिए योग करें। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के करना है, जब भी आपका मन करे योग करें। योग करने से ये रहता है कि आपका घर परिवार खुश रहता है, खुश रहने से ये रहेगा कि आप जब अपने घर परिवार से खुशी होकर नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आप अपनी नौकरी को ईमानदारी पूर्वक करेंगे। दूसरी, यहां एक चीज का मैंने एक्सपीरियंस लिया कि परमात्मा का भी मैं आपको बहुत एक अच्छा उदाहरण बताता हूं कि जो मैंने भगवान को पहली बार जिंदगी के अंदर देखा है। मैं आज से 6 साल पहले बॉम्बे के अंदर कंट्रोलर की नौकरी करने गया था। बांद्रा एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है अमृतसर के लिए, हम बांद्रा स्टेशन से चढ़े, बोरीवली से एक मदर, उसकी डॉटर और उसकी 3 महीने की डॉटर, वो मथुरा के लिए जा रहे थे। स्लीपर के अंदर वो चढ़े, गलती से एक्चुअली वो उनको मेल से जाना था, बाकी सुबह की गाड़ी में बैठ गए। नाला सुपारा पे आके उनको इतनी तेज घबराहट हो रही हुई कि ये गलत डब्बे में हमने बैठ गए। उस जितने भी उस डब्बे में बैठे थे उन्होंने प्रेयर करी गॉड से, जो गाड़ी वहां नहीं रुकना था ग्रीन सिग्नल पर भी गाड़ी रुकी। उस दिन मैंने परमात्मा को देखा कि परमात्मा इस दुनिया के अंदर है, यदि आप उससे सच्चे दिल से प्रेयर करेंगे वो आपके सामने मौजूद रहेगा। इसलिए यहां जो आए और काफी सीखा, मैं उन सबका शुक्रिया करता हूं। और इस मंच पर मुझे खड़ा होकर उद्बोधन के लिए मैं अपनी बहन रतलाम से जो आई सीमा दीदी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मंच पे सुरेश भाई से बोलता हूं कि सीमा दीदी का यहां बुला के सम्मान किया जाए।
थैंक यू। गिरीश भाई, जहां सेफ्टी की बात आती है वहां पर्यावरण की सुरक्षा की भी बात आती है। आजकल क्लाइमेट चेंज के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जैसे यहां कॉन्फ्रेंस है, लोग शादी ब्याह में जाते हैं, तो जो खाना जूठा छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो पर्यावरण को नुकसान करता है और कैसे हमारे मानसिक स्तर पर भी उसको रोकने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, क्या सोचना जरूरी है ताकि वो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने समाज के आर्थिक रूप से भी गिरावट के कारक बन रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं?
इसके दो तीन पहलू हैं जो भाई साहब आपने पूछा। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, भारत में जीवन काल का एक बहुत ही सुंदर एक उत्सव या एक सेलिब्रेशन जो भारतीय समाज उसको बहुत बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता है वो है शादी, बच्चों की शादी, और उसमें हम इतना एक्स्ट्रावेगेंटली हम उस पर खर्चा करते हैं, इतना दिखावा करते हैं। मुझे दिखावा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस दिखावे में हम नुकसान ना करें। इतना खाना बनाते हैं और वो खाना लोग अगर नहीं खाते हैं फिर उसको हम फेंक देते हैं, तो उसका जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी उसमें मेहनत लगी है, पानी का, वायु का, जल का, रिसोर्सेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, बिजली का, पेट्रोल का, वो सब वेस्ट जा रहा है और ये सब हमारे प्रकृति को बर्डन करते हैं, उस पर बोझा आता है। मैं आपको एक विशेष बात इस मंच से कहना चाहूंगा। आज फॉरेन में क्लाइमेट चेंज का समिट चल रहा है और उस समिट में लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मानव ने प्रकृति को इतना ज्यादा दूषित कर दिया है कि इट हैज रीच्ड अ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, अब उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। प्रकृति से होने वाली आपदाओं को हमको सहन करना ही पड़ेगा, इट हैज रीच्ड दैट लेवल ऑफ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब वो ये कह रहे हैं कि होने वाले नुकसान से खुद के मन के एजिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, दुख को, तकलीफ को, मेरे आंखों के सामने मेरा घर बाढ़ में डूब करके उसका विनाश हो रहा है, प्लीज बताइए मैं किसको दोषी ठहरा हूं? सरकार को, भगवान को, लोगों को, अपनी किस्मत को? अब ना रोके फायदा है, ना दोष देकर फायदा है, अब जो होना था सो हो गया। फिर भी मैं ये कहता हूं, बाह्य प्रदूषण, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, द नेचर आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड, अंदर का नेचर कलेक्टिवली संगठित रूप में समाज का रिफ्लेक्शन है, देश का रिफ्लेक्शन है, प्रकृति का रिफ्लेक्शन है। तो राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी ये कहती है, मन का आवेश, मन की गति, मन में दुख अशांति, इनमें थोड़ा सा नियंत्रण करें, शांति, सुख, प्रेम, इन भावनाओं को लेकर के आए, और ये अगर पूरे वातावरण विश्व में कलेक्टिवली 750 करोड़ आत्माएं इस भाव में रहेंगे तो प्रकृति में जो होने वाली हलचल है उस पर बहुत नियंत्रण किया जा सकता है। हमें कंज्यूमरिज्म, खरीदना, खरीद खरीद, खाना खाना, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, जिसको हम दूसरी भाषा में मिनिमलिस्टिक लिविंग कहते हैं, कितने कम में हम जी सकते हैं, कितना कम हम एनर्जी खर्चा करें, जरूरत नहीं है तो भी हम खरीदते हैं चीजों को, क्यों? क्योंकि आजकल खरीदने का सुख है, पहनने का सुख है, आंतरिक सुख और शांति अगर मुझे मिल जाए तो कम में भी हम खुश रहा जा सकता है। इसी तरह खान, किसी भी चीज की बर्बादी, बिजली का वेस्टेज, पानी का, मुझे याद आता है मैं राजस्थान में रेलवे पुलिस का प्रोग्राम कर रहा था, वहां दीदी ने हमारे टेबल में पानी के ग्लास में सिर्फ 1/4 पानी भरा, बोला गिरीश भाई इतने से काम हो जाएगा क्या? मैंने कहा ये कौन सा भारतीय समाज है कि आप इतना पानी भर के बोल रहे हो इससे हो जाएगा क्या? बोला पीने का पानी नहीं है, क्योंकि पीने हमारे डाइनिंग टेबल में पूरा ग्लास भरकर पानी मिलता है, हम खाना खाते दो सिप पानी पीते, बाकी तो हम फेंक ही देते हैं ना। ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति पूछेगा तुमको कितना पानी चाहिए उतना ही डालें, खाना कैसे करते हैं ना, एक रोटी चलेगी, दो रोटी बस हो गया, और चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे पानी की दशा आने वाली है। और ये सब मानव का ही क्रिएशन है, बिजली की बचत, पानी की बचत, पेट्रोल की बचत, डीजल की बचत, गैस की बचत, संकल्पों की बचत, बोल की बचत, कर्मों की बचत। ये तभी हो सकता है जब हमारे ऊपर स्वयं पे नियंत्रण, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर हो। वो राजयोग मेडिटेशन करिए और जीवन के हर क्षेत्र में इसका हम लाभ पा सकते हैं भाई साहब।
मुझे लगता है कि जो बातें हमें व्यवहारिक जीवन में अच्छा बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है, उन सब बातों पर आज हमने चर्चा की है। लेकिन अंत में मैं हमारी आदरणीय राजकुमारी बहन जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए यहां से जो कुछ सुना है उसे सार रूप में, किन शब्दों में आप सुनाएं, जिन भी बातों को नियमित रूप से अपनाने की आवश्यकता है, ताकि इन भाई बहनों का न केवल अपना जीवन खुशहाल जीवन बने, सुखी जीवन बने, लेकिन ये अपने साथी परिवार के लोगों के बीच भी एक संदेश वाहक बनकर के जाएं, खुशनुमा जीवन का, सुरक्षित जीवन का, वो आप प्रेरणाएं दें, ताकि ये भी खुशी रहें और दूसरों को भी खुशी बांटते रहें।
वैसे देखा जाता है कि हर कोई अच्छा बनना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, परंतु समस्या वहां होती है कि जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। इसके लिए ही इस ईश्वरीय ज्ञान की और राजयोग की जरूरत है, क्योंकि इसी से ही हमें वो मार्गदर्शन मिलता है कि अच्छा होता क्या है। नहीं तो आजकल दुनिया में ये भी एक मूंझ है कि अगर कुछ भी बात है तो वहां हम सहन कर लें या सामना करें। कई बार व्यक्ति सोचता है अगर सहन कर लेंगे तो सब हमको तकलीफ देते ही रहेंगे, और अगर हम सामना कर लेंगे तो लोग डर के मारे हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। पर वो सोच हमारी गलत है। जो हमारा गुणों का स्वरूप है वो हमको सुखी करता है, और वो ही हमारा ऊंचा व्यक्तित्व होता है। इसकी नॉलेज और साथ साथ इन सभी अच्छी बातों को धारण करने की शक्ति जो हमको राजयोग से मिलती है, इसलिए बहुत सारी बातें न कह करके मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप सभी, जो भी आपका समीप का राजयोग सेवा केंद्र है, आप वहां रोज जाकर के ईश्वरीय ज्ञान का और राजयोग का लाभ लेंगे तो बाकी सब कुछ आपके लिए सहज हो जाएगा। हर एक समस्या का समाधान करना, हर एक गुण का स्वरूप बनना, कुशल व्यवहार करना, सुख देना, सुख लेना, श्रेष्ठ कर्म करना, ये सब आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और साथ साथ ये सब करने की आपको पावर भी मिलेगी राजयोग के द्वारा। तो आप अपने समय का अमूल्य हिस्सा केवल एक घंटा आप जरूर निकालें और अपने समीप के राजयोग सेवा केंद्र पर जाकर आप रोज इसका लाभ लेंगे तो आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर, सुखी और सुखदायी बनता जाएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरे भारत और नेपाल, आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारी हमारे सेवा केंद्र की बहनों ने बहुत मेहनत किया है। आप जैसे महान आत्माओं को यहां तक पहुंचाने के लिए वही निमित्त बनी हैं। तो उन बहनों को, चूंकि समय है, सीमाएं हैं, तो सबको तो हमने आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन पूरे कार्यक्रम के आयोजन में आई हुई सभी बहनों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच अभी सीमा बहन जो रतलाम से आई हुई है, उनको पुष्पगुच्छ के माध्यम से सम्मानित और धन्यवाद करने के लिए मैं राजकुमारी बहन जी से अनुरोध करता हूं कि वो इन्हें सम्मानित भी करें, और आप सब बहनें और सभी भाई उस सम्मान के साथ साथ
धन्यवाद भी करें ताकि आप सब इसमें शामिल होकर के आगे भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम यहां पर समाप्त करते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे यहां अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्य में परमात्मा का साथ रखने की विधि है, उस प्रमाण हम दो मिनट के लिए शांति की स्थिति में बैठेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ओम शांति।